ये आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से समाचार सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि ईरान और इसराइल पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। संघर्ष विराम अगले कुछ घंटों में प्रभावी होगा। ये घोषणा कल रात कतर स्थित अमेरिकी एयरबेस पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद की गई। एक रिपोर्ट।
एक बयान में श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों द्वारा अपने अंतिम मिशन समाप्त करने के बाद ये संघर्ष विराम लागू होगा। ये संघर्ष विराम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध विराम की पहल करेगा और 12 घंटे बाद इजराइल युद्ध विराम लागू करेगा। 24 घंटे बाद 12 दिन के युद्ध की आधिकारिक समाप्ति की घोषणा की जाएगी। समाचार कक्ष से मनोज।
इस बीच ईरान ने संघर्ष विराम से इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि ईरान पर इसराइल का हमला बंद होने पर ही ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। हमले जारी रखने का ईरान का कोई इरादा नहीं है। उधर इसराइल की अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है। इससे पहले ईरान ने कतर में अमरीकी हवाई एयरबेस अल उदीद पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। कतर में ये एयरबेस पश्चिम एशिया में अमरीका का सबसे बड़ा सैनिक केंद्र है। ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमरीका के हमले के बाद ये ईरान की जवाबी कार्रवाई है। ईरान का मुख्य लक्ष्य दोहा के दक्षिण पश्चिम में स्थित ये सैन्य ठिकाना था, लेकिन उसने इराक में एन अल असद बेस को भी निशाना बनाया है। कतर और अमेरिका ने कहा है कि हमलों में कोई हताहत नहीं हुआ है। कतर ने कहा कि एयरबेस को पहले ही खाली करा लिया गया था और उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान के मिसाइल हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। इस बीच बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अपने वायु क्षेत्र फिर से खोल दिए हैं। ईरान के हमले के जवाब में उन्होंने एयरबेस अस्थायी रूप से बंद कर दिए थे। इस बीच ईरान के हमलों के बाद तेल के वैश्विक कीमतों में पिछले 5 वर्षों में एक ही दिन में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। तेल की कीमतें $5 प्रति बैरल कम हुई और इसमें 6% से अधिक की गिरावट आई। सप्ताहांत के तनावों के कारण तेल बाजार में शुरुआत में उछाल आया, लेकिन तेल की बिकावली तेजी से शुरू हुई। ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत मशहद से सुरक्षित निकाले गए 290 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक कल शाम विशेष उड़ान से नई दिल्ली पहुंचे। अब तक ईरान से 2,295 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ईरान से निकाले गए 292 भारतीय नागरिक आज तड़के विशेष विमान से मशहद से नई दिल्ली पहुंचे। स्वदेश लौटे नागरिकों ने भारत सरकार और दूतावास को धन्यवाद दिया।
गए थे हम लोग ज्यारत के लिए, जाके परेशान थे, कायदे से लोग लेके यहाँ तक आए और हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार हैं,
बहुत मदद की है हर जगह जाने के लिए। बस हर जगह आप लोग टेलीफोनिक सपोर्ट एनी टाइम 24 आवर, अगर जरूरत पड़ रही किसी चीज में क्वेश्चन है तो एम्बेसी सपोर्ट कर रही है।
संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। ये दिन 25 जून को 1975 को भारत के संविधान को कुचलने की घटनाओं की याद दिलाता है। इस दिवस पर उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों के कारण कष्ट झेले। ये भारतीय इतिहास का सबसे काला समय था। इस दिन उन सभी लोगों के योगदान को भी याद किया जाता है जिन्होंने आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। लीड्स में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 371 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने कल चौथे दिन तक बिना किसी नुकसान के 21 रन बना लिए हैं। जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय गेंदबाजों के पास श्रृंखला में बढ़त बनाने का शानदार अवसर है। बल्लेबाजों के लिए मुश्किल होती लीड्स की पिच पर आज आखिरी दिन इंग्लैंड के सामने 300 रन बनाना मुश्किल चुनौती है। इससे पहले कल ऋषभ पंत के 118 और केएल राहुल के 137 रन की बदौलत भारत ने दूसरी पारी में 364 रन बनाए। पहली पारी ही की तरह ही भारतीय मध्यक्रम एक बार फिर बिखरा और अंतिम 5 विकेट सिर्फ 31 रन पर गंवा दिए। पंत एक ही टेस्ट में 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बने। मौसम विभाग ने कल से पश्चिमोत्तर भारत के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश में वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया है। आज मध्य प्रदेश में अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल और कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।